सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सौर ऊर्जा में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अर्जुन जे चौधरी।
आज के कार्यक्रम में हम विस्तार में बातचीत करेंगे श्री नरेंद्र तनेजा जी से, भारत के वैश्विक नेतृत्व जो उन्होंने दिखाया है सूर्य ऊर्जा में, और हम बातचीत करेंगे किस तरीके से हमने 127 गीगावाट की स्थापना की है सूर्य ऊर्जा में। नरेंद्र तनेजा जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
धन्यवाद
मिस्टर तनेजा। हम शुरुआत करेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के स्पीच से। उन्होंने बात की है कि सोलर एनर्जी के कई बेनिफिट्स भी हैं, और कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक रणनीति के तौर से स्ट्रेटेजिकली ये लोगों को फायदा पहुंचा सकती है, तो आपके इसके बारे में क्या कहना है?
जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस पूरा आज विश्व जानता है और उसकी चारों तरफ आज बात की चर्चा है, ये पहल भारत ने की थी, और खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने जो है ये देखा था कि जो सौर ऊर्जा है उसका किस तरीके से विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और कुल मिलाकर जो ऊर्जा का अर्थशास्त्र है उसको बदला जा सकता है, और साथ साथ जो हमारी जो आयात पर निर्भरता है ऊर्जा को लेकर के उसको कम किया जा सकता है, काफी हद तक हमको ऊर्जा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो हमको स्वतंत्र किया जा सकता है। और वहां पर उस दौरान उन्होंने काफी नए पहल की थी, उन्होंने नहरों के ऊपर कैसे सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, दूर दराज के इलाकों में कैसे सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं, और किस तरीके से उद्योगों को जो बड़ी वहां की कंपनियां हैं उनको सौर ऊर्जा में निवेश के लिए जो है उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। और अगर आप इतिहास उठा करके देखते हैं तो 2014 से पहले सौर ऊर्जा में हमने कुछ किया ही नहीं था, बहुत कम, इतना कम था कि जब उस समय के हमारे प्रधानमंत्री कोपेनहेगन क्लाइमेट समिट में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो काफी हमारे मंत्रालयों को संघर्ष करना पड़ा कि भाई किस तरीके से हम दिखाएं दुनिया के सामने कि हमने क्या किया है, और दिखाने के लिए दरअसल ज्यादा कुछ था नहीं, तो कुछ घोषणाएं हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री ने इसकी तरफ जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया और कहा कि इसको जाकर के एक प्रायोरिटी एरिया बना दिया, उन्होंने कहा कि भाई जब हमारी आयात पे इतनी ज्यादा निर्भरता है, तेल पे, गैस पे, यहां तक कि कोल पे, यूरेनियम पे, सब पे इतनी निर्भरता है, इसको हमको कम करना होगा, जब ईश्वर ने, भगवान ने, कुदरत ने हमको इतना सारा सोलर पावर दे रखी है, सोलर रेडिएशन दिया है, तो हम इसका प्रयोग क्यों नहीं करते। तो इन्होंने इसको बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने आकर के इसको टॉप प्रायोरिटी का जो अपना एजेंडा था उस पर रखा, और कुल मिलाकर के ये एक उसका एक विजन लेकर के आए, और उसके बाद उसके हिसाब से नीति निर्माण करा गया, उसके बाद नीति का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बनाया गया, जहां जहां फाइनेंशियल फिस्कल सपोर्ट देने की जरूरत थी उसको बनाया गया, उसके बाद तमाम राज्यों को उसके अंदर शामिल किया गया। शुरू में कुछ राज्यों ने जो है इतना उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा इसके जो है कि फायदे क्या होते हैं तो धीरे धीरे जुड़ते गए, और आज ये हालत है कि पूरे देश में आप कहीं भी जाएं तो आपको ये ऊर्जा क्रांति जमीन पे दिखती है, जिसमें सरकार की नीतियां तो है ही है, सरकार तो है ही है, राज्य सरकारें तो है ही है, लेकिन कुल मिलाकर के आम आदमी भी उससे जुड़ा, और यही पूरा प्रधानमंत्री का जो भारत को लेकर के गुजरात से शुरू हुआ, उसके बाद वो भारत को लेकर उन्होंने एक विजन जो लेके आए थे, जब वो एक सम्मेलन में गए विदेश में और वहां जाकर के उन्होंने इसको जो है पेश किया दुनिया के सामने, और ये जो देखा कि तमाम विकासशील देश जो हमारे अपने मित्र देश हैं, जिनकी आर्थिक हालत हमारे जैसे हैं, जिनको लोग ग्लोबल साउथ बोलते हैं, कहा कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो सरकारी हो, इंटर गवर्नमेंटल हो, हम देश सब मिल करके एक ऐसा संगठन बनाए जिससे पूरी दुनिया के अंदर जो सौर ऊर्जा है उसको हम प्रोत्साहित करें, उसको इंसेंटिवाइज करें, और जिन जिन देशों को उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए या उनको लिए किसी तरह की सहायता या सपोर्ट चाहिए, या नीति निर्माण कैसे किया जाता है, रेगुलेशन कैसे किया जाता है, उसके लिए वित्तीय जो साधन है कैसे जुटाए जाते हैं, और किस हिसाब से लोगों को ट्रेन किया था उसको लेकर के आए, तो ये एक विजन था जो उन्होंने पेश किया। उसके बाद फ्रांस जो है वो भारत के साथ जुड़ा, और भारत और फ्रांस ने इसकी पहल करी, तो कुल मिला के था तो हमारे प्रधानमंत्री का विजन लेकिन फ्रांस उसमें साथ जुड़ा, और दोनों देशों ने मिलकर के इसमें शुरुआत करी। आज ये स्थिति है कि आज दुनिया के 120 से ज्यादा देश, इसमें अमेरिका जैसे विकसित देश भी शामिल हैं, यूरोप के तमाम देश शामिल हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तो है ही है, वो सब इसके सदस्य बन चुके हैं, और देश इसके सदस्य बनना चाहते हैं, क्योंकि ये कुल मिलाकर के जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे रिलायबल, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सूरज है, सूर्य है हमारा, उस सूर्य से तमाम जो रेडिएशन होता है वो उससे किस तरीके से प्रयोग करके आर्थिक विकास कर सकते हैं, आर्थिक समृद्धि ला सकते हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं और काफी हद तक ऊर्जा के मसले में अपने को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये एक शुरुआत थी जो अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इसकी यात्रा को देखें और आज जो उपलब्धियों को आप उठा करके देखते हैं तो आज जो है ये बहुत महत्व रखता है। और दूसरा, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो या शिक्षा को लेकर के हो, लेकिन सौर ऊर्जा जो भविष्य है इस पृथ्वी का, ह्यूमन काइंड का, उसका शुरुआत भारत ने करी और उसका ग्लोबल हेडक्वार्टर एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का आज भारत में।
अब हम सुनते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा, सूर्य ऊर्जा के फायदे क्या हैं।
अर्जेंट एंड कॉन्क्रीट स्टेप नीड टू बी टेकन टू डील विद दिस थ्रेट। इंडिया इज कमिटेड टू कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इज टेकिंग डिटरमाइंड स्टेप्स। इंटरनेशनल सोलर एनर्जी वॉज लॉन्च्ड इन 2015 एंड इट्स फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 2018 इन न्यू दिल्ली। The ISA represents a significant step to addressing this global challenge by encouraging the adoption and use of solar energy. Solar energy is a rediscovery of an ancient truth, that is sun.
Mr. Taneja, Rashtrapati Draupadi Murmu ne ye baat bhi kahi ki 127 gigawatt ki jo humne sthapna ki hai abhi surya urja ko leke, उसके साथ ही साथ हमें पर्यावरण संरक्षण और इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करना है, इसका क्या महत्व है।
अगर आप उठाकर के पिछले 3-4 दिनों के अखबार उठाकर के देखें, अब बिहार के अंदर बहुत बड़ा पर्व है, छठ का पर्व होता है, जिसमें आम आदमी, कोई सरकार की भूमिका नहीं, किसी संगठन की भूमिका नहीं, आम आदमी हजारों साल से इस दौरान आता है और वो महिलाएं हमारी आती हैं और सूर्य की पूजा करती हैं। आप कल्पना कीजिए, सूर्य की पूजा करना और एक तरह सूर्य को धन्यवाद देना इसलिए कि सूर्य ने हमको इतना कुछ दिया है, तो कुल मिलाकर के यही ऊर्जा अब इसको सोलर पावर के रूप में जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, लाई लेके आ जा रहा है, जिससे कि आर्थिक समृद्धि आए, वहां से इसकी शुरुआत। और उसके बाद ये सोलर पावर, सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिससे किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता, लेकिन साथ साथ अगर आप उसका अर्थशास्त्र को ठीक तरह से मैनेज करें और उसका कुल मिलाकर के मॉडल सही तरीके से पेश करें, तो कम से कम पूंजी और कम से कम टेक्नोलॉजी और कम से कम मेहनत करें आप जो है वो ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसको देखती है हमारे, जैसे मैंने कहा कि जो प्राचीन समय से हम तो उसके महत्व को समझते आए हैं, आज नई टेक्नोलॉजी की वजह से, नई पॉलिसी की वजह से और खासतौर से सरकार के नई नीतियों के कारण ये एक ऐसी क्रांति है जो जमीन पर शक्ल ले रही है, खासतौर से रूरल एरिया के अंदर जो धरातल है उसमें परिवर्तन आ रहा है, जीवन अच्छा हो रहा है। और सबसे अहम बात कि कुल मिलाकर के विकास इस तरीके से जिससे कि जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा की जा सके, जिससे जो कुल मिलाकर के, क्योंकि ये ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे घर के अंदर है, चाहे उद्योग धंधे में है, चाहे वो खेत में है, सब जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, विकास भी होता है और पर्यावरण जो है उसका भी हम पूरी तरीके से हिफाजत कर पाते हैं।
अब हम सुनते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कहती हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के आगे जाकर क्या रणनीति होनी चाहिए।
सोलर फॉर सी इनिशिएटिव इज ए वेलकम इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन थ्रू स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस इन एरियाज सच एज पॉलिसीज, फाइनेंसिंग एंड स्किलिंग। अक्रॉस इंडिया एंड मेनी मेंबर कंट्रीज वुमेन आर बिकमिंग सोलर इंजीनियर्स, एंटरप्रेनर्स एंड ट्रेनर्स। They are maintaining mini grids, operating solar pumps, and bringing light to their areas. Their leadership ensures that solar energy not only reduces carbon footprints but also breaks gender barriers. Energy access in the hands of women will definitely transform the lives of communities.
Mr. Taneja, Rashtrapati Draupadi Murmu ने समावेशी विकास के बारे में भी बात की, किस तरीके से ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा दे सकता है, इसमें कई अवसर भी हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है।
जैसे राष्ट्रपति जी ने कहा कि समावेशी विकास, ऐसा विकास जिससे कि कुल मिलाकर के हर एक को उसका फायदा हो, और दूसरी बात यह है कि आसपास के जितने भी लोग हैं और अर्थशास्त्र के जो उनकी इकोनॉमी है, जो आम आदमी के अर्थशास्त्र है, उनकी अर्थव्यवस्था है, उसके सभी पहलुओं को इससे फायदा मिले। जैसे राष्ट्रपति जी ने चर्चा करी महिलाओं की, कई जगह आप जाकर के आप भारत के अंदर देखिए कि महिलाओं की कोऑपरेटिव बन रही है, वो कोऑपरेटिव बना करके वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर की जो सरकार की स्कीम है उसके तहत जो है वो अपना छोटा सोलर का पावर प्लांट लगाते हैं, लगा करके उसको महिलाएं चलाती हैं, उसका जो कॉमर्शियल डिसीजन होती है वो महिलाएं लेती हैं, उसके बाद वो जो ऊर्जा होती है उसको कैसे कहां किसको किसको घर में किस धंधे उद्योग धंधे में दिया जाए उसका महिलाएं तय करती हैं, और कुल मिला के उसका जो भी फायदा होता है वो उसका महिलाएं उठाती हैं। उद्यमी जो है आप कैसे बन सकते हैं, वही सौर ऊर्जा जिसका आप उत्पादन भी कर रहे हैं उसी के आधार पर छोटे छोटे जो लघु कारखाने होते हैं वो आप लगा सकते हैं, जिससे कि महिलाएं अपने लिए भी रोजगार पैदा करती हैं। ये जो सरकार की नई पहल है जो बजट से खासतौर से शुरू हुई, ये रूरल इंडिया के अंदर वहां का पूरा लैंडस्केप, खासतौर से इकोनॉमिक लैंडस्केप और खासतौर से समावेशी विकास के संदर्भ में भारी परिवर्तन ला रहा है।
मिस्टर तनेजा, ये जो हरित ऊर्जा है ये साफ तो है, बड़ी अफोर्डेबल कैसे बनता है एक आम आदमी के लिए, पर यूनिट एनर्जी कॉस्ट क्या बनता है, किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसको फैसिलिटेट करता है?
अभी तक क्या था कि हम लोग काफी हद तक जो है पैनल्स हैं, सेल्स हैं, सोलर पावर के लिए हम आयात कर रहे थे। उसे जब वो चीज कब को आप आयात करते हैं उसका अर्थशास्त्र अलग हो जाता है, थोड़ा महंगा होता है। उसके बाद हमारी सरकार ने जो है पिछले 7 साल में खास तौर से ये कदम उठाए, और जिसमें प्रधानमंत्री का बिल्कुल एकदम कड़ा निर्देश था कि हमको भारत को जल्दी से जल्दी स्वावलंबी बनना है, हमारी आयात पर निर्भरता हमको जहां तक संभव हो खत्म करनी है। उसके तहत जो है हमने देखा कि दो बड़ी बड़ी गीगा फैक्ट्री जिसमें सोलर पार्क इक्विपमेंट पैनल्स ये सब बन रहे हैं उसकी शुरुआत करी गई, और नई 2 गीगा फैक्ट्री अभी और आ रही है, जो शायद एक बैंगलोर के पास आ रही है और एक पुणे के पास आ रही है, अभी तक ये 2 गुजरात में है, इनका निर्माण हो रहा है। इसके अलावा और कई कंपनियों ने डाइवर्सिफाई किया और उन्होंने इसको बनाना शुरू किया है, तो कुल मिलाकर के सोलर पावर इक्विपमेंट और सेल्स और ये बिल्कुल नीचे आ जाता है, इसकी कॉस्ट नीचे आती है, नंबर वन। नंबर टू, कुल मिलाकर के अगर आपको एक छोटा मिनी सोलर पावर प्लांट लगाना है, चाहे 2 मेगावाट का है, 1 मेगावाट का है, या पंचायत लगाना चाहती है, तो उसके लिए सरकार ने स्कीम दी है जिससे कि बहुत ही सस्ते दामों पर आपको जो है आर्थिक सहायता मिलती है। तीसरा, उसके लिए जो ट्रेनिंग की आवश्यकता है जिससे कि आप कैसे पैसा मोबिलाइज कर सकें, कैसे पैसे को आप रेज कर सकें, टेक्नोलॉजी कैसे लेके आ सकें, उसके बाद उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके लिए नई स्कीम निकाली गई है और उसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो कुल मिलाकर के अगर आप इसको देखते हैं तो इससे जब आप इस तरह का पावर प्लांट लगाते हैं जो 1 मेगावाट 2 मेगावाट 3 मेगावाट या उससे भी छोटा आप लगाते हैं, उसकी अर्थशास्त्र बिल्कुल अलग है। जब आप एक बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाते हैं जो 300 मेगावाट 400 मेगावाट 600 मेगावाट जो हमारे देश में लग रहे हैं, कुछ एक हमारे देश में एक इतना बड़ा सोलर पावर प्लांट बन रहा है जो जमीन पे सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, तो एक तरफ तो हम दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं जिनको सोलर पार्क बोलते हैं, और दूसरी तरफ जो है बिल्कुल मिनी और न्यू मिनी भी लगा रहे हैं जो कि बहुत छोटे हैं, जिसको कि कुल मिलाकर के 10-5 महिलाएं या 20-25 लोग आते हैं या आकर के वो उसकी पहल करते हैं और उसका वहां से उत्पादन शुरू हो जाता है। और तमाम राज्य सरकारों को इसको साथ में लिया गया है, और राज्य सरकारें कुछ अपनी अपनी स्कीम्स भी लेकर के आ रही हैं, कुछ एनजीओ लेकर के आ रही हैं, कुछ बड़े कंपनियां लेकर के आ रही हैं। ये अब जो है भारत के अंदर एक क्रांति है, और आने वाले समय के अंदर अगर भविष्य को आप देखते हैं तो सौर ऊर्जा जो हमारे पूरा एनर्जी मिक्स है, सौर ऊर्जा की उसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी, और दूसरी सबसे बड़ी भूमिका जो वो आणविक ऊर्जा की होगी। लेकिन आणविक ऊर्जा को भी अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो उसको भी कहा जाता है कि आणविक ऊर्जा भी तो सोलर एनर्जी है, क्योंकि जो या सोलर एनर्जी भी आणविक ऊर्जा है। आप कैसे इसको देखते हैं, क्योंकि जो सन है, जो सूरज है हमारा, वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो ईश्वर ने बनाया, कुदरत ने बनाया। तो सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर का आपस में बहुत क्लोज लिंक है, सब एक दूसरे के बिल्कुल मिले जुले हैं, क्योंकि सब सूरज से आता है। सूरज जो है वो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसको आम भाषा में हिंदी में कहते हैं तो आणविक भट्टी है।
नरेंद्र तनेजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे सौर ऊर्जा में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अर्जुन जे चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में